डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट ओटी इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र व्याख्यान एक 2020 डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट ये पाठ्यक्रम परिचय 00329 कक्षा चलो शुरू करें। यहाँ की घड़ी लगभग 5 मिनट धीमी है, इसलिए हमें इसे छोड़ते समय याद रखना होगा। लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे। यह पुराने नियम का इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र कक्षा है और इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दूसरे वर्ग ने पहले ही इसे आपके लिए गर्म और गर्म कर दिया है। आइए इन लोगों को कुछ पाठ्यक्रम प्राप्त कराएं। जैसा कि हमने कहा, यह पुराने नियम का इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम है और इसलिए आप सही कक्षा में हैं। हम इस कक्षा में होंगे, विश्वास करें या न करें, पहले दिन के बाद आप कहेंगे कि यह पागलपन है, लेकिन हम इस पूरे पाठ्यक्रम का वीडियो टेप करेंगे। मैं टेपों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की आशा करता हूँ। आपको वीडियो प्रस्तुत करने और संपादित करने के लिए मुझे सप्ताहांत का समय देना होगा। मैं उन्हें हर सोमवार को जगाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। काइल लिंकन कक्षा के लिए हमारे टीए होंगे और वह वहां हमारे वीडियो टेप विशेषज्ञ होंगे। वह इस कक्षा के लिए समीक्षा सत्र भी चलाएंगे। जब हम परीक्षाओं की ओर बढ़ेंगे तो समीक्षा सत्र होंगे, काइल उन्हें चलाएगा। तो वह व्यक्ति है जिसे आपको जानना आवश्यक है। आइए प्रार्थना के एक शब्द के साथ शुरुआत करें और फिर हम पाठ्यक्रम का परिचय देंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। पिताजी, हम आपके शब्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पुराने नियम में दर्शाए गए हजारों वर्षों में अपने प्यार, अपने गुस्से और मानव जाति के प्रति अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त किया है। आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस पाठ्यक्रम में इतनी सदियों से लोगों के साथ और कई अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ अपने विभिन्न संबंधों को देखने की अनुमति दी। पिता, हम बहुत अलग प्रकार के लोग हैं। हम आपको जानना चाहते हैं, हम आपसे प्यार करना चाहते हैं और हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह पाठ्यक्रम उन लक्ष्यों तक ले जाए कि हम तेरा आदर और महिमा करें, जो मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ हमारे साथ आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मसीह के नाम पर आमीन। यह पुराना नियम है। मुझे लगता है कि मैं पाठ्यक्रम को पढ़कर शुरुआत करना चाहूंगा। हम जमीन का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और वैसे इस प्रथम कक्षा के घंटे में सब कुछ न पकड़ना ठीक है, यह समय के साथ आ जाएगा। हम अभी सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं, तो चलिए बस इसके माध्यम से चलते हैं। आप मेरा नाम देखें, मैं डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट हूँ। मैं हिल्डेब्रांट या टेड के नाम से जाना जाता हूँ, बस मुझे टेडी मत कहिए। छात्र से बात खां महोदया, आपको एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। ठीक है, मेरी संपर्क जानकारी वहां है, मैं बहुत सारी ईमेल करता हूँ। मुझे खेद है कि मैं पुरानी ईमेलिंग करता हूँ, मैं फेसबुक नहीं करता। एक पुरानी प्रणाली है जिसे वे ईमेल कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि उस प्रणाली का उपयोग कैसे करें? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम सीटी के साथ काम कर सकते हैं और वे आपको इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे एहसास है कि यह एक पुरानी प्रणाली है, लेकिन मैं अभी भी इसका उपयोग करता हूँ। क्षमा करें, मैं इस समय अपना मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं फ्रॉस्ट 304 तीसरी मंजिल फ्रॉस्ट में हूँ, वहाँ प्रोफेसरों का एक समूह है। मेरा फोन नंबर एक्सटेंशन 4412 है और मेरा ईमेल वहां है। मेरे घंटे, मैं ज्यादातर सुबह वहां रहता हूं। मैं आमतौर पर लगभग 8:30 या 9 बजे आता हूं, इसलिए मैं आमतौर पर 8:30 या 9 बजे से दोपहर तक रहता हूं। इसलिए यदि आपके पास कोई प्रश्न है या आप आना चाहते हैं और किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो बेझिझक आएं। मैं आमतौर पर 8:30 दोपहर के समय में रहता हूँ। मैं आमतौर पर उस समय अधिकांश समय वहीं रहता हूँ। बी पाठ्यक्रम पढ़े 3:30 से 3:58। तो आइए पाठ्यक्रम का विवरण दें। यह पुराने नियम के इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र में एक पाठ्यक्रम है। यह पुराने नियम की उसके इतिहास के संदर्भ में जांच करता है। पुराने नियम में इतिहास वास्तव में महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि भगवान इतिहास में ये अविश्वसनीय चीजें करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह पुस्तक केवल मिथक और किंवदंतियां नहीं है, ये घटनाएं वास्तव में इतिहास में घटित हुई हैं। इसलिए यह हमारे लिए इतिहास में परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों को दर्ज करता है। सी रहस्योद्घाटन और व्याख्यात्मक प्रक्रिया में संस्कृति का महत्व 3:59 से 7:38। हम इसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पढ़ाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह पुस्तक बाइबल 21वीं सदी में आप लोगों की आदत से बहुत अलग संस्कृति से हमारे पास आती है। मूसा ने 1400 ईसा पूर्व में लिखा था। अब्राहम 2000 ईसा पूर्व में रहते थे, यानी 3000 से 4000 साल पहले। तो संस्कृति बहुत बहुत अलग थी। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या संस्कृति में कोई फर्क पड़ता है? क्या संस्कृति से बड़ा फर्क पड़ता है? हाँ, इसलिए हमें इसके सांस्कृतिक प्रभाव का एहसास करना होगा। बाइबल हिब्रू भाषा में लिखी जाएगी। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि बहुत कम लोग हैं, हालांकि पिछली कक्षा में मेरे पास एक यहूदी साथी था जो कुछ हिब्रू भाषा सीख सकता था। यह हिब्रू भाषा में लिखा गया है, और क्या भाषा इस बात को प्रभावित करती है कि चीजें कैसे संप्रेषित की जाती हैं? कभी कभी भाषा द्वारा विभिन्न प्रकार की बातें संप्रेषित की जा सकती हैं, और इसलिए भाषा ही वास्तव में महत्वपूर्ण है। वैसे हिब्रू लोग उल्टा पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं दाएं से बाएं, हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। अब क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने पीछे की ओर कहा था? क्या आपने देखा कि मैंने अभी क्या किया? क्या वह सांस्कृतिक चीज है? क्या वे कहेंगे कि हम पीछे की ओर पढ़ते हैं? मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि भाषा अलग है। जब भगवान पुराने नियम में आते हैं और हमें कविता देते हैं, तो क्या वह कविता जो वह हमें देते हैं वह अच्छी अमेरिकी कविता है? नहीं। क्या आपको एहसास है हिब्रू कविता छंद और मीटर का उपयोग नहीं करती है? छंद और छंद अंग्रेजी भाषा में इतने अंतर्निहित हैं, फिर भी इब्रानियों द्वारा उनका उपयोग भी नहीं किया जाता है। वे उस तरह कविता नहीं करते। वे समानता का उपयोग करके विचारों को टुकबंदी करते हैं। तो यह कविता करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। वैसे क्या ईश्वर ने स्वयं को उस संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया? क्या ईश्वर स्वयं को संस्कृति के अनुरूप ढालता है? यह एक बड़ा सवाल है। या क्या भगवान नीचे आते हैं और कहते हैं, अरे मैं यही हूं, तुम लोग इसे मेरे तरीके से करो, या यह राजमार्ग है? क्या ईश्वर अपने आप को अनुकूलित करता है? जब भगवान कविता लिखने के लिए नीचे आते हैं तो क्या वह हिब्रू कविता लिखते हैं? हाँ, वह करता है। इसलिए वह उनकी भाषा और संस्कृति को अपनाता है, और यह बहुत सी चीजों को प्रभावित करता है कि वह कैसे संवाद करेगा। क्या आपने कभी किसी अन्य संस्कृति में संचार करने का प्रयास किया है? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं न्यूयॉर्क शहर में था और हम अंतर सांस्कृतिक हो गए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप कभी एक अलग संस्कृति में रहे हैं जहाँ आपके आसपास हर कोई उस अन्य संस्कृति का है? क्या इससे आपके संवाद करने के तरीके पर असर पड़ता है? हर चीज अलग है। यह एक दिलचस्प अनुभव है। उम्मीद है आपको गॉर्डन कॉलेज में ऐसा करने का मौका मिलेगा। कुछ अर्थों में आप यहाँ ऐसा करेंगे क्योंकि हम पुराने नियम से गुजर रहे होंगे और पुराना नियम हमें 3000 साल पीछे ले जाएगा। इसलिए संस्कृति एक महत्वपूर्ण प्रभाव है इस संदर्भ में कि भगवान स्वयं को कैसे व्यक्त करते हैं और लोग कैसे समझते हैं, क्या सुनते हैं। वैसे क्या आपकी संस्कृति इस पुस्तक को सुनने के आपके तरीके को प्रभावित करती है? क्या आप अपनी 21वीं सदी की संस्कृति में बंद हैं? क्या आपके स्कूलों ने आपको तैयार किया है, प्रशिक्षित किया है और वास्तव में आपको पीसी साइज किया है? आप अमेरिकी हैं और आपको एक निश्चित तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। जब आप पुराने नियम की सामग्री पढ़ेंगे तो क्या आप चौंक जाएंगे? आप चौंक जाएंगे क्योंकि जो आप सुनते आए हैं वह उससे बहुत अलग है। अमेरिका में हमारे अपने दृष्टिकोण हैं जिन्हें हम सुनने के आदि हैं। हमें विविधता पर गर्व है ना? मैं सिर्फ इसलिए हंसता हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता। हम उस छोटे पीसी राजनीतिक रूप से सही दायरे के संकीर्ण दायरे में विविध हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब आप बाइबल में पहुँचते हैं कोई पीसी सर्वसम्मति नहीं है। यह बिल्कुल कच्चा जीवन है क्योंकि यह अपने सभी उतार चढ़ावों के साथ घटित होता है। तुम्हें उससे जूझना होगा। तो मैं उसे तुम्हारे चेहरे पर ठूंस दूंगा और तुम्हें छटपटाते हुए देखूंगा और उसमें से कुछ सामग्री चौंकाने वाली होगी। यह अब भी कभी कभी मुझे चौंका देता है। तो संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। दी पाठ्य सामग्री पढ़ने में भूगोल का महत्व 7:39 से 10:51। भूगोल एक और चीज है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। गृह युद्ध के बाद मैं एक साल तक इसराइल में रहा। मैं और मेरी पत्नी इसराइल में रहते थे और इसलिए मुझे उन जगहों के बारे में पता चला। क्यों? मैं उन जगहों पर चला। जब यह जैतून के पहाड़ से वापस मंदिर क्षेत्र में जाने और यीशु के गधे पर सवार होने की बात करता है तो मैं उस सड़क पर चल चुका हूँ। मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि कितनी बार, लेकिन शायद सैकड़ों बार मैं जैतून पर्वत पर चढ़ गया हूँ। मैं एक बार तस्वीर लेने के लिए 8 इंच बर्फ पर भी चढ़ गया था। मैं जो कह रहा हूँ, जब आप किसी जगह को जानते हैं तो यह कहने जैसा होगा कि यीशु डेनवर गए और मॉल गए। अब प्रश्न, क्या आप डेनवर्स कहाँ हैं? क्या आप जानते हैं कि मॉल कहाँ है? जब यह ऐसा कहता है तो आप ठीक ठीक जानते हैं कि यह कहाँ है और आप समझते हैं कि क्या हो रहा है। वैसे क्या भूगोल चीजों को प्रभावित करता है? मुझे इसे इस प्रकार कहने दीजिए, आप में से कितने लोग मैसाचुसेट्स से हैं? क्या भूगोल चीजों को प्रभावित करता है? आप में से कितने लोग न्यू हैम्पशायर से हैं? प्रश्न, आप न्यू हैम्पशायर के लोग, क्या भूगोल चीजों को प्रभावित करता है? क्या न्यू हैम्पशायर मैसाचुसेट्स से अलग है? आप कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, मैसाचुसेट्स न्यू हैम्पशायर से अलग है। यदि आप न्यू हैम्पशायर जाएंगे तो वे आपको यह बताएंगे। वैसे क्या कोई मेन से आता है? क्या मेन अन्य दो से अलग है? मैं कहां से हूं? असल में सच तो यह है कि अब मैं नहीं जानता कि मैं कहां से हूं। मैं मूल रूप से नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क क्षेत्र से था और मैं इसराइल और टेनेसी में रहता था। मैं कुछ समय के लिए टेनेसी में रहा। मेरी पत्नी ने कहा, मैं अपने बच्चों को इस तरह बात करने के लिए बड़ा नहीं कर रही हूँ। मुझे स्वयं यह पसंद आया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अंग्रेजी की प्रमुख है, इसलिए उसने मुझे सही तरीके से बोलना सिखाया है, ली। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वह यह है कि क्या भूगोल महत्वपूर्ण है? मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप टेनेसी से हैं तो क्या आप गंभीरता से टेनेसी में मैसाचुसेट्स की तुलना में एक अलग दुनिया में पले बढ़े हैं? क्या टेनेसी की पहाड़ियों में कोई अंतर है? क्या वे मैसाचुसेट्स में आपको जो मिलेगा उससे बहुत अलग हैं? हाँ, क्या वह भूगोल किसी व्यक्ति के विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित करता है? उदाहरण के लिए, यदि वे मध्य पश्चिम से हैं, या यदि वे टेक्सास से हैं, या यदि वे अलबामा से हैं, क्या भूगोल चीजों को प्रभावित करता है? हम भूगोल को लगभग एक भाषा की तरह पढ़ना सीखने जा रहे हैं। आप भूगोल को एक भाषा की तरह पढ़ना सीखते हैं इस संदर्भ में कि इसमें किस प्रकार की चीजें परिलक्षित होती हैं। क्या न्यूयॉर्क शहर वर्जीनिया से अलग है? शहर के संदर्भ में क्या आपको एक तरह का विश्व दृष्टिकोण मिलने वाला है और क्या आपको वेस्ट वर्जीनिया में रहने का एक बिल्कुल अलग तरीका मिलने वाला है? मुझे गलील बनाम यरूशलेम के बारे में बताओ। गलील वह स्थान है जहां मुर्गों का एक झुंड रहता था। तो यीशु वहीं से हैं। इसलिए जब वह यरूशलेम शहर में आता है तो चीजें बदल जाती हैं। आपको यह सीखना होगा कि भूगोल कैसे पढ़ा जाता है और यह चीजों को कैसे प्रभावित करता है। इस साहित्यिक पृष्ठभूमि 10:52 से 13:55। एल पुनरावर्ती पृष्ठभूमि बाइबल साहित्यिक रूपों का उपयोग करती है। भगवान उस समय के साहित्यिक रूपों का उपयोग करते हैं। तो हम व्यवस्था विवरण की किताब जैसी चीजों में जाने जा रहे हैं। अचानक आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ रहे होंगे और आप कह रहे होंगे, पवित्र गाय, इसे देखो, यह लगभग बिल्कुल हित्ती संधि प्रपत्र जैसा है। हित्तियों की अपनी संधियां थीं और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उस साहित्यिक रूप को लगभग टी में फिट करती है। क्या परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की संपूर्ण पुस्तक की संरचना के लिए हित्ती संधि का उपयोग किया था? बहुत संभावना है। तो दूसरे शब्दों में क्या साहित्यिक कारक हैं? भगवान हिब्रू कविता लिखते हैं जैसे वह भजनों में लिखते हैं। हम भजन सीखेंगे जैसे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन आप देखेंगे वे छंद और छंद का उपयोग नहीं करते जैसा कि हम अंग्रेजी में करते हैं, वे विचार की समानता और समांतरता करते हैं। यह कविता करने का बिल्कुल अलग तरीका है। मुझे इससे प्यार है, यह वास्तव में मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र है, हिब्रू कविता। यह खूबसूरत है। तो ऐसे साहित्यिक सम्मेलन हैं जिनका पालन भगवान भी करेंगे। उनमें से एक हिब्रू भाषा होगी। वह नीचे आएगा और हिब्रू में बात करेगा। असल में मैं आप लोगों को पहले ही परेशान कर देना चाहता हूं, क्या एडम का नाम वास्तव में एडम था? छात्र की प्रतिक्रिया, खैर हिब्रू में एडम का अर्थ आदमी है। प्रश्न, क्या आदम और हव्वा हिब्रू बोलते थे? मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में बस एक सेकंड के लिए सोचें। क्या आदम और हव्वा हिब्रू बोलते थे? एडम का नाम आदमी है, ईव का नाम हवा है। आप हवा जानते हैं क्योंकि आप कहते हैं ला हेम। क्या कोई ऐसा कहता है? ठीक है, लाहिम एक यहूदी टोस्ट है जिसका अर्थ है जीवन के लिए। हवा उसका नाम है, आप उसे ईव कहते हैं। हवा का नाम जीवन से बना है। एडम और ईव के नाम का हिब्रू में कुछ मतलब होता है। प्रश्न, क्या एडम हिब्रू बोल सकता है? इसका उत्तर यह है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, वह हिब्रू नहीं बोल सकता था, नहीं उसका नाम वास्तव में एडम था, क्योंकि स्पष्ट रूप से हिब्रू भाषा 1800 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में नहीं थी। यदि हिब्रू भाषा अस्तित्व में नहीं थी तो उस व्यक्ति को हिब्रू नाम कैसे दिया जा सकता था? फिर आप कहते हैं, उहो, पूरी बाइबिल खत्म हो गई, आदम और हव्वा गायब हो गए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि क्या एडम और ईव संभवतः उनके मूल नामों के अनुवाद हैं? क्या उन्होंने संस्कृतियों के बीच नामों का अनुवाद किया, क्षमा करें, इस कक्षा में आप में से कुछ लोग, क्या आपका नाम आपकी संस्कृति से हमारी संस्कृति में अनुवादित है? हाँ, तो क्या यह कोई धमकी देने वाली बात है? जवाब न है। उनके पास नाम है, और उसका नाम क्या था, कौन जानता है कि यह क्या था, लेकिन जब उन्होंने इसका हिब्रू में अनुवाद किया, तो भगवान कहते हैं कि उन्हें समझ में आ गया। उसके नाम का मूल अर्थ मनुष्य था और इसलिए उन्होंने उसे एडम कहा। वैसे क्या हम इसका हिब्रू से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं? जब अंग्रेजी की बात आती है तो क्या हिब्रू और अंग्रेजी के बीच जाने में कोई समस्या आती है? हाँ, वहाँ है। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको हिब्रू भाषा से निपटना होगा और हम देखेंगे। भाषा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम साहित्यिक पृष्ठभूमियों को देखने जा रहे हैं। एफ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 13:56 से 14:09। प्राचीन निकट पूर्वी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उन्होंने इन सभी पुरातात्विक कलाकृतियों को खोदा है और हम पुरातत्व पर ध्यान देंगे और बाइबल को समझने में हमारी मदद करने के लिए इसने क्या किया है। पुरातत्व तुलनात्मक इतिहास, साहित्य, धार्मिक विषय और विभिन्न चीजें हमें पुराने नियम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। जी, पुराने नियम का परिचय 14:10 से 15:58। पश्चिमी संस्कृति में आध्यात्मिकता की नींव के रूप में इन ग्रंथों के अनुप्रयोग के लिए भी इसका पता लगाऊंगा। मैं इस पाठ्यक्रम में, और यह कुछ लोगों को परेशान करेगा, लेकिन मैं आपको पुराने नियम को समझने की कोशिश करने के लिए भारी चीजें सिखाऊंगा। आप पुराने नियम की अधिकांश सामग्री सीखेंगे। क्या ओल्ड टेस्टामेंट आप लोगों के लिए एक सेमेस्टर में पढ़ने के लिए बहुत बड़ा है? सचमुच नया नियम पुराने नियम के आकार का एक तिहाई है। पुराना नियम बहुत बड़ा है, तो हम इसमें से कुछ को कवर करेंगे। मैं इसके माध्यम से शॉटगन करने के बजाय इसमें से कुछ को अच्छी तरह से करना पसंद करूंगा। हम मूलतः इतिहास अनुभाग करेंगे। इतिहास के साथ बात यह है, यदि मैं आपको इतिहास में रुचि दिला सकता हूं, और मैं आपको इतिहास में रुचि दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, यदि पुराने नियम का इतिहास दिलचस्प है, तो मुझे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताएं। क्या वे सचमुच दिलचस्प हैं? और क्या कविता सचमुच सुंदर है? इसलिए हम इतिहास पर बहुत समय बिताएंगे और इतिहास कविता और भविष्यवक्ताओं के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा। अगला है व्यक्तिगत आध्यात्मिकता। इस पाठ्यक्रम के लिए मेरा लक्ष्य यह है कि आप पुराने नियम से प्रेम करें। जब आपका काम पूरा हो जाएगा, तो मूल रूप से मुझे आशा है कि आप ईश्वर से प्रेम करेंगे और आप उसके वचन से प्रेम करेंगे। इस व्यक्तिगत आध्यात्मिकता दृष्टिकोण को अपनाने के लिए मैं बहुत सी व्यक्तिगत कहानियां सुनाता हूँ। कुछ छात्रों को व्यक्तिगत कहानियां पसंद आती हैं, क्योंकि इससे कक्षा अधिक मनोरंजक हो जाती है और उन्हें यह देखने को मिलता है कि मैं कितना पागलपन का शिकार हूँ। हालांकि मैं ऐसा जानबूझकर करता हूँ, इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो ईश्वर के वचन पुराने नियम को अपना रहा है और 21वीं सदी के जीवन के साथ संबंध दिखा रहा है। मैं 3000 साल पुरानी और 21वीं सदी की किसी चीज से संबंध जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यह एक व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी कहानियां देखें जो इसे बहुत ही व्यक्तिगत दृष्टिकोण से चित्रित करेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें और व्यक्तिगत स्तर पर हम ईश्वर के बारे में कैसे सोचते हैं। एच, पुराने नियम के परमेश्वर को जानना 15:59 से 20:11। पुराने नियम के बारे में मुझे जो पसंद है वह यह है, अब मुझे अपने चित्रण के साथ सावधान रहना होगा। मान लीजिए कि एक युवक एक युवा महिला को डेट कर रहा है और वह इस युवा महिला को केवल काम के संदर्भ में जानता है। मान लीजिए कि वे मैकडॉनल्ड्स में एक साथ काम करते हैं। वे दोनों मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और वे एक दूसरे को अक्सर मैकडॉनल्ड्स में ही देखते हैं। प्रश्न, जब वह उसे केवल एक संदर्भ में देखता है तो क्या वह वास्तव में उसे जानता है? आप किसी व्यक्ति को कैसे जानते हैं? क्या आप किसी व्यक्ति को कई अलग अलग संदर्भों में देखकर उसके बारे में जान पाते हैं? उन्हें तनाव में देखना, उन्हें उनके माता पिता के साथ देखना, क्या यह बहुत महत्वपूर्ण है? उन्हें उनके माता पिता के साथ देखना, उन्हें उनके भाई बहनों के साथ देखना, उन्हें उनकी भतीजियों के साथ देखना, उन्हें उनके शिक्षकों, उनके आधिकारिक लोगों के साथ देखना, उन्हें नौकरी पर देखना, उन्हें नौकरी से बाहर देखना। वे कैसे पार्टी करते हैं? जब आप किसी को सैकड़ों अलग अलग स्थितियों में देखते हैं तो आप उस व्यक्ति को जान पाते हैं। लगभग 1500 वर्ष की अवधि में हमें ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं। पुराने नियम में भगवान सैकड़ों लोगों के साथ व्यवहार करने जा रहे हैं। अब्राहम, इसहाक, जैकब, जोसेफ, 12 भाई, मूसा, हारून, मरियम आदि। हम भगवान को सैकड़ों लोगों के साथ बातचीत करते हुए देखेंगे और जो मैं दिखाने की कोशिश करने जा रहा हूँ वह यह है कि आप जो सोचते हुए बड़े हुए हैं, भगवान उससे बहुत अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रोफेसर सहित हम सभी के पास वह चीज है जिसे मैं मन की मूर्तियां कहता हूँ। दूसरे शब्दों में, झूठे तरीके से हम ईश्वर की कल्पना करते हैं। ईसाई बनने का एक हिस्सा ईश्वर के प्रति आपके दृष्टिकोण को खंडित करना है। नास्तिकता में नहीं उड़ाया गया, बल्कि ईश्वर की पूजा करने में उड़ा दिया गया जो वह वास्तव में है। आश्चर्य है, मैं यही करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। मैं बस कार्डों को मेज पर रखने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपको ईश्वर के रहस्य पर आश्चर्य करने के लिए तैयार कर सकूंगा। आश्चर्य में क्या अच्छा है? एक उदाहरण के लिए मैं स्वयं का उपयोग करता हूँ। इसलिए मैं पुस्तकालय में जाता हूँ। मेरे भाई, जब मैं कॉलेज में था तब मैं थोड़ा धीमा था। मुझे मेरी पत्नी के साथ मूल रूप से पुस्तकालय में बिठाया। वह उसे कुछ नशीले पदार्थ, नोप डोज, बेचने की कोशिश कर रहा था। वह ड्रग्स नहीं लेगी। तो वह मेरे पास घर आता है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वह घर में आता है और कहता है, टेड, अब देखिए, मैं उसका बड़ा भाई था और मैं एक तरह से सीधा था, जिसका मतलब था अजीब। उन दिनों वह हर तरह की बहुत बुरी चीजें कर रहा था और उसने कुछ चीजें उस पर गिराने की कोशिश की और उसने उसे नहीं उठाया। तो वह घर आता है और कहता है, टेड, तुम्हें इस लड़की से मिलना है। वह भी आपकी तरह ही अजीब है। तुम्हें इस लड़की से मिलना है, इसलिए मैं लाइब्रेरी गया और लाइब्रेरी में उससे मिला और उससे हैंडेल के मसीहा के बारे में पूछा, जिसे वह देखना चाहती थी। तो फिर हम बाहर चले गए। प्रश्न, क्या मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ? अब 36 वर्ष हो गए हैं। क्या 36 साल बाद भी मेरी पत्नी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि आश्चर्य क्या होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर मोहित हो जाते हैं और आप उन्हें वास्तव में करीब से जानना चाहते हैं। क्या हमारे बच्चों के साथ हर तरह की चीजें अलग अलग संदर्भों में सामने आती हैं? वे इन मुद्दों को उठाते हैं और वह एक चीज पर उतर जाती है और मैं ठीक इसके विपरीत पर चला जाता हूँ। फिर हमें एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि बच्चे हमें एक दूसरे के खिलाफ बना रहे हैं। यह अच्छे पुलिस वाले बुरे पुलिस वाले का खेल है। इस प्रक्रिया में हमें एक दूसरे से निपटना होगा। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वह ईश्वर के प्रति उस व्यक्ति के रहस्य की धारणा बनाना है जिसे आप प्यार करते हैं, और इसलिए आप यह जानना चाहते हैं कि वे कौन हैं। ईश्वर ने हमें अपने वचन अपनी बाइबल में एक प्रेम पत्र भेजा है। जब आप वास्तव में किसी की परवाह करते हैं तो क्या आप उनकी छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं? मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि बाइबल हमें ईश्वर के बारे में बहुत सी बातें बताएगी और मैं चाहता हूं कि आप उससे मोहित और आसक्त हो जाएं। ईश्वर आपके प्रेम का विषय, आपके आश्चर्य का विषय, आपके रहस्य का विषय बन जाता है और आप उसमें फंस जाते हैं। उस पर ध्यान न देने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, ईश्वर को जानना। आए अन्य पाठ्यक्रम लक्ष्य 20:12 से 20:44। हमारे लक्ष्य पुराने नियम की मूल सामग्री को जानें। लोग नए नियम को जानते हैं, यीशु पानी पर चलते हैं, लोग न्यू टेस्टामेंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पुराने नियम के बहुत से लोग नहीं जानते। एक बार जब हम उत्पत्ति से बाहर निकल जाते हैं और जब हम लैविकस से टकराते हैं तो यह खत्म हो जाता है। तो उत्पत्ति अच्छी है, हर कोई आदम और हव्वा, नूह और बाढ़ और इस तरह की चीजों को जानता है। इसलिए जेनेसिस अंदर घुसने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन एक बार जब हम वहां से बाहर निकलेंगे तो हम तैरने लगेंगे, तो हम पुराने नियम की सामग्री सीखेंगे। मैं सामग्री सीखने में बड़ा हूं। जे बाइबल का प्रसारण और अनुवाद 20:45 से 22:59। बाइबल हम तक कैसे पहुंची? इसकी उत्पत्ति और प्रसारण क्या है? मैं इस बाइबल को पकड़ता हूं, मैं अब NIV का उपयोग करता हूं। यह NIV कैसे अस्तित्व में आया? क्या भगवान ने NIV लिखा? नहीं, क्या आप जानते हैं कि NIV किसने लिखा? मार्व विल्सन। यह एक मजाक माना जाता था, जाहिर तौर पर यह बहुत अच्छा नहीं हुआ। सच्ची सच्चाई यह है कि वह NIV के अनुवादकों में से एक थे। अब मुझे नहीं लगता कि वह इसका विज्ञापन करते हैं। प्रश्न, क्या मार्व विल्सन के लिए गलती करना संभव है? आप मार्व विल्सन को नहीं जानते? नहीं, इसलिए आपको गारंटी दी जाती है कि कुछ पुस्तकें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन एक चीज जो हमें तुरंत करने की जरूरत है, क्या मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लोग मुझ पर सचमुच गंभीर हो रहे हैं? क्या आप व्यंग्य समझते हैं? मैं व्यंग्य समझाता हूं। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे टेप पर कहा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं कुछ व्यंग्यात्मक कहता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने जो अभी कहा उसका बिल्कुल विपरीत मतलब है। यदि आप इसे वही मानेंगे जो मैंने अभी कहा है, तो हम एक दूसरे को पूरी तरह से याद करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, डॉक्टर विल्सन उन महानतम व्यक्तियों में से एक हैं जिनसे मैं अपने जीवन में कभी मिला हूं, यह सच है। अब सच तो यह है कि वह गलतियां करता है, सभी इंसानों की तरह वह भी गलतियां करता है। अब वह मेरी तुलना में बहुत कम कमाता है, लेकिन वह काफी इंसान है। वैसे आप उनकी पुस्तक हमारे पिता अब्राहम पढ़ रहे होंगे, गॉर्डन में यह एक क्लासिक है। हम एक मिनट में इसके बारे में बात करेंगे। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची, डॉक्टर विल्सन को यह कैसे मिला। ठीक है, आप कहते हैं उसने इसका हिब्रू से अनुवाद किया क्योंकि वह हिब्रू बहुत अच्छी तरह से जानता है। यह सच है। उसे हिब्रू पाठ कहां से मिला? ठीक है, हिब्रू पाठ 1000 ईस्वी से आया है, लेकिन 1000 ईस्वी के लोगों को यह कहां से मिला? यह मूसा से हम तक आया। क्या इसकी बार बार प्रतिलिपि बनानी पड़ी? जब लोगों ने इसकी नकल की तो क्या उन्होंने कभी गलतियां की? जब लोगों ने इसका अनुवाद किया हिब्रू से ग्रीक में और फिर ग्रीक से लैटिन वल्गेट में, तो क्या उन्होंने कभी गलतियां की? जब यह अंग्रेजी में आता है तो क्या अलग अलग अनुवाद एक दूसरे से असहमत होते हैं? आप किसे चुनते हैं? तो बाइबल उस समय से कैसे आई और यह अब हमारे पास कैसे आती है? हम उसका पता लगाना चाहते हैं और उसमें अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं। के पाठ्य पुस्तकें 23:00-25:22। इसलिए जहां तक लक्ष्य का सवाल है तो यहां बहुत सारी चीजें हैं और मैं उस बिंदु पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। तो आइए यहां पेज 2 पर पाठ्य पुस्तकों पर गौर करें। अपनी पाठ्य पुस्तकों पर जाएं। इस पाठ्यक्रम में मूलतः एक नहीं दो चीजें हैं जिन्हें आपको खरीदना है। एक चीज जो आपके पास होनी चाहिए वह है बाइबल। कौन सा अनुवाद आपके ऊपर निर्भर है? क्या आप में से अधिकांश लोग एनआईवी का उपयोग करते हैं? आप में से कितने लोग एनआईवी का उपयोग करते हैं? आप में से बहुत से लोग एनआईवी का उपयोग करते हैं। मैं कुछ अनुवादकों को जानता हूं। यह एक अच्छा अनुवाद है और अच्छे लोगों द्वारा किया गया है। क्या कोई एनआरएसवी का उपयोग करता है? एनआरएसवी ठीक है। काइल, क्या अन्य लोग भी हैं? एनआरएसवी नया संशोधित मानक संस्करण है। यह एक अच्छा संस्करण भी है। यह अमेरिकी अंग्रेजी से कहीं अधिक, मैं कैसे कहूं, व्यापक अंग्रेजी में किया गया था। क्या कोई ईएसवी का उपयोग करता है? ईएसवी और आरएसवी इस तरह करीब हैं। मेरी राय में ईएसवी है और वैसे मुझे बस यही करने दीजिए। जब मैं यहां चलता हूं तो इसका मतलब है कि मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं। वहां बाइबल है, यह मेरी राय है। क्या मुझे राय रखने का अधिकार है? हाँ, लेकिन जब मैं यहां से गुजरता हूं तो क्या आप उस पर भरोसा करते हैं या नहीं? यह मैं हूं, इस पर विश्वास करो। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि यह मेरी राय है और मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन मैंने हजारों स्थानों पर ईएसवी की जांच की है और मूल रूप से यह एनआरएसवी का ही नमूना है। लेकिन एनआरएसवी बहुत अच्छा है, ईएसवी अच्छा है। क्या कोई एनएलटी न्यू लिविंग ट्रांसलेशन का उपयोग करता है? आपको उससे सचमुच सावधान रहना होगा। विशेष रूप से नीतिवचन और अन्य स्थानों की पुस्तक में आपको एनएलटी से बहुत सावधान रहना होगा। कभी कभी वहां मौजूद नीतिवचनों की पुस्तक को देखें और उसमें मौजूद समस्याओं को देखें। दुखद मजाक, मैं नीतिवचन के लिए एनएलटी के अनुवादकों में से एक था। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ यह कह रहा हूं। तो हमारे पास और कौन से अनुवाद हैं? किंग जेम्स संस्करण, क्या कोई किंग जेम्स करता है? आप देखेंगे कि मैं अक्सर किंग जेम्स का उद्धरण देता हूं। मैं अक्सर एनआईवी को देखता रहूंगा, लेकिन मैं अपने दिमाग में किंग जेम्स को पढ़ता रहूंगा क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मुझे किंग जेम्स वर्जन केजेवी में प्रशिक्षित किया गया था और किंग जेम्स अभी भी मेरे अंदर बहुत गहराई से बसा हुआ है। द किंग जेम्स अब तक कहीं भी किए गए सबसे खूबसूरत अनुवादों में से एक है। यह एक अभूतपूर्व कार्य है। क्या कोई न्यू किंग जेम्स संस्करण का उपयोग करता है? न्यू किंग जेम्स संस्करण बहुत उपयोगी है और बहुत सारे तुम्हारे और तू को हटा देता है जो इसे और अधिक पठनीय बनाता है। यह एक अच्छा अनुवाद है, न्यू किंग जेम्स। वे सभी ठीक हैं। एलडीएसवी का परिचय, डिजिटल अमेरिकी मानक संस्करण 25:23-28:33। अब मैं आप लोगों से कुछ परिचय कराना चाहता हूं। लगभग 2 साल पहले मेरी कक्षा में एक लड़की थी जिसे देखने में परेशानी होती थी। जब मैंने उसे एक परीक्षण दिया तो मैंने उसे 46 पेज का परीक्षण दिया क्योंकि फॉन्ट 24 पीटी से अधिक होना था। इसलिए प्रत्येक पृष्ठ पर 1 या 2 प्रश्न थे। कुछ पृष्ठों पर मुझे बस इतना ही मिल सका। उसे देखने में परेशानी हो रही थी। दूसरे पिछले वर्ष से पहले मैं उसका नाम उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन एक लड़की ठीक सामने बैठी थी, एक महान व्यक्ति, लेकिन वह अंधी थी और वह बेंत लेकर घूमती थी। फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि आप ऐसे किसी व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें ऐसा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। एक के मामले में मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे सिर्फ एक नाम बनाने दीजिए। जेनिस फॉन्ट को उड़ाने में सक्षम होना था। वैसे क्या फॉन्ट को उड़ाने के लिए कंप्यूटर एक अद्भुत चीज है? क्या आप लोगों ने कभी वेब के साथ ऐसा किया है जहां आप कंट्रोल प्लस दबाते हैं और आप फॉन्ट को सीधे अपनी स्क्रीन पर बड़ा कर सकते हैं? नियंत्रण इसे फिर से सिकोड़ देता है। तो मैंने जो करने का निर्णय लिया वह बाइबल का अपना अनुवाद बनाना था, और आप कहते हैं कि यह वास्तव में अहंकारपूर्ण है, और यह शायद है, और यह शायद बेवकूफी है। वैसे भी मैंने यह किया। मैं इसे दास्व कह रहा हूं। दास्व डिजिटल अमेरिकी मानक संस्करण है। इसे 1901 के एसवी से बनाया गया है। मैंने एसवी को आधार के रूप में इस्तेमाल किया और फिर मैंने इसे संशोधित और अद्यतन किया। जब यह डिजिटल प्रारूप में है तो इसका क्या फायदा है? यह ऑनलाइन है। यदि यह स्क्रीन पर है तो क्या आप इसे प्रिंट कर सकते हैं? हाँ, यह पीडीएफ में है, यह डीओसी में है। आप लोग डीओसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हैं, यह एचटीएमएल में है। क्या आप लोग पीडीएफ, एचटीएमएल, डीओसी का उपयोग करते हैं? इसे डॉक में डालने का क्या फायदा? क्या आप इसे अपने वर्ड प्रोसेसर में डाल सकते हैं? क्या आप इसे काटकर चिपका सकते हैं? हाँ, पीडीएफ का क्या फायदा है? इसे मैक्स और पीसीज और कहीं भी पढ़ा जा सकता है। एचटीएमएल का क्या फायदा है? जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यह तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है। एचटीएमएल वेब की भाषा है। साथ ही दुर्भाग्य से मैंने अपनी आवाज से, जिसे ऑडियो MP3 कहा जाता है, भी बनाया। अब पुराने दिनों में उनके पास ये चीजें होती थीं जिन्हें आप अपनी बांह पर रख लेते थे, उन्हें कहा जाता था, मुझे लगता है कि ये आईपॉड थे। आप इन चीजों को अपनी बांह पर रखते हैं और फिर आप इन चीजों को अपने कानों में डालते हैं और आप इस चीज के साथ घूमते हैं और आप जॉगिंग के लिए निकलते हैं। या यदि आप मेरी पत्नी हैं और आपको हर दिन लोवेल की यात्रा करनी है और आप कार में 1 घंटे और 10 मिनट की यात्रा कर रहे हैं, तो आप MP3 काट लें और उसे एक सीढ़ी पर रख दें। क्या आप कभी कार में रहते हुए किताबें सुनते हैं, क्योंकि आप काम पर जाने के लिए प्रतिदिन 2.5 घंटे की यात्रा करते हैं? तो संपूर्ण बाइबल के लिए MP3 ऑडियो हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्या आप धर्मग्रंथ सुन सकते हैं? तो यह दास्व के फायदों में से एक है। मैं अन्य चीजों की खोज कर रहा हूं, जैसे कि छवियां, पाठ के साथ छवियां और पाठ के साथ छवियों का संयोजन, और डिजिटल प्रारूप मुझे ऐसा करने की अनुमति देता है। यह ऑनलाइन है, और ईमानदारी से कहूं तो 2 सप्ताह पहले गुरुवार को मैंने अंततः इसे पूरा कर लिया। लंबे समय के बाद आखिरकार मैंने इसे पूरा कर लिया और यह अब मेरे संपादक के पास है। क्रॉनिकल्स आखिरी किताब होगी। मेरी संपादक मेरी माँ है। वह इसके अंतिम भाग का संपादन कर रही हैं। लेकिन वैसे भी दास्व डिजिटल अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण उन लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है जो इसका उपयोग करना चाहते हैं। एम हमारे पिता अब्राहम डॉक्टर मार्व विल्सन द्वारा 28-34-34-19। अब इस कक्षा के लिए आपको जो एकमात्र पुस्तक खरीदनी है वह डॉक्टर मार्व विल्सन की पुस्तक अवर फादर अब्राहम है। यह यहाँ का क्लासिक है। यह डॉक्टर विल्सन द्वारा किया गया है जो गॉर्डन में पढ़ाते हैं। क्या इस पूरे परिसर में हमारे पिता इब्राहिम की प्रयुक्त प्रतियां हैं? यहां आने वाले प्रत्येक छात्र को यह पुस्तक खरीदनी पड़ती है, इसलिए हर जगह पुरानी प्रतियां उपलब्ध हैं। तो आपको इसे काफी सस्ते में प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। आइए मैं इस कक्षा के अंतिम भाग को समझाऊं, जहां तक इस कक्षा के लिए क्या आवश्यक है इसकी बात है। ऐसा करने के लिए मुझे यहां चलने दीजिए। सच तो यह है कि जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप जहां बैठे हैं वहां मैं कभी नहीं बैठ सकता था। जब मैं कॉलेज से गुजरा तो मैं वास्तव में गरीब था। मैं सप्ताह में 40 घंटे काम करता था और स्कूल जाता था। आप कहते हैं, ओह, यह वास्तव में 40 घंटे काम करना और स्कूल जाना है जो साफ सुथरा रहा होगा। जब आप सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं और पूरे समय इंजीनियरिंग स्कूल जाते हैं तो यह अच्छा नहीं है। यह मजेदार नहीं है, यह बहुत सारा काम है और यह वास्तव में परेशानी भरा है। लेकिन मैं बहुत गरीब था और मेरे माता पिता और मेरे परिवार में कोई भी कॉलेज नहीं गया, तो मैं पहला था। यह कॉलर जो मैं पहनता हूं वह अब सफेद है, लेकिन वह कॉलर वास्तव में नीला है, कोर तक नीला। मेरे माता पिता कभी कॉलेज नहीं गए, इसलिए मैं अकेला था जो कॉलेज जाता था। मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे, वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। तो क्या मैं इस वास्तविक समझ के साथ बड़ा हुआ कि पैसे का क्या मतलब है और इसके न होने से जुड़ी सीमाएं क्या हैं? खैर, 5 साल पहले मैं इस कक्षा के लिए किताबें आवंटित कर रहा था और किताबें लगभग 100 रुपए तक मिल रही थीं। क्या तुम लोगों ने अपनी किताबें खरीद ली? क्या आपने कक्षाओं के लिए पुस्तकों के लिए 100 रुपए चुकाए हैं? पुराने नियम की पुस्तकों की कीमत $100 होने लगी थी। मैंने कहा, यह पागलपन है। यदि मैं एक छात्र होता और इस कक्षा में आता और मुझसे पुस्तकों के लिए $100 का शुल्क लिया जाता जो अच्छी नहीं होती। मैंने सोचा कि ऐसा करने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। मैं यह भी जानता हूं कि किताबें प्रकाशित करना कैसा होता है। मैंने किताबें और सीडी इत्यादि प्रकाशित की हैं। प्रश्न, प्रकाशक कितना कमाता है? मुझे इसे इस तरह से कहना चाहिए, यह मेरी पत्नी की बात है। वह कहती है, आपने पूरी गर्मी ज्ञान साहित्य पर इस लेख पर काम करते हुए बिताई और उन्होंने इसे इंटरवर्सिटी में प्रकाशित किया, बुद्धि और कविता के लिए शब्दकोश। इसलिए मैंने पूरी गर्मी इस पर काम करते हुए बिताई और हम 200 से 300 घंटे के काम के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इसके लिए कितना भुगतान मिलेगा? मैं बिल्कुल ईमानदार रहूंगा, मुझे इसके लिए कितना भुगतान मिला? $250। समझ से बाहर। मेरी पत्नी एक सीपीए है, उसके पास थी और उसने कहा, आप प्रति घंटे $1 से भी कम कमा रहे हैं। आप सैम क्लब या वॉलमार्ट में क्यों नहीं जाते और स्वागतकर्ता क्यों नहीं बन जाते? कम से कम आपको न्यूनतम वेतन मिल जाएगा। टेड, यह सब बेवकूफी भरी बातें लिखने के बजाय यह 600% की वृद्धि होगी। मैं आपको जो बता रहा हूं वह यह है कि प्रकाशक 90% कमाते हैं और लेखक 10% से कम कमाते हैं। तो अब मेरी बात यह है कि मैं वास्तव में इंटरनेट का लाभ उठाना चाहता हूं। दूसरों की भलाई और भगवान की महिमा के लिए डिजिटल माध्यम का लाभ उठाएं। अब हम यह कैसे करें? खैर, इसका मतलब है कि मैं अब बहुत से विद्वानों को जानता हूं क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं। मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूं और कहता हूं, अरे, आपको उस लेख पर कॉपीराइट मिल गया है, क्या हम उस लेख का उपयोग गॉर्डन कॉलेज में कर सकते हैं? क्या मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर सकता हूं? अब सवाल है, जब मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करता हूं तो इसका क्या फायदा है? क्या अब मैं इसे पूर्ण पाठ HTML doc PDF में पोस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसे एक MP3 ऑडियो फाइल भी बना सकता हूँ ताकि आप इन लेखों को सुन सकें? अब आप इसे सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वैसे क्या कुछ लोग इसे वैसे ही पढ़ना पसंद करते हैं जैसे यह उन्हें सुनाया जा रहा है? आप वास्तव में इसे सेट कर सकते हैं ताकि जब आप पाठ को देखें तो यह आपको पढ़े और यह आपकी आंखों और कानों दोनों में समा जाए। तो वैसे भी मैंने इसे पढ़ लिया है और कर लिया है, और पाठ्यक्रम में आपके लिए आवश्यक सभी चीजें मूल रूप से मेरे पास हैं। तो इससे आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? इसमें आपको उसका एक अंश खर्च करना पड़ता है। तो आप मुझे 10 रुपए का भुगतान करें और वह आपको इस पाठ्यक्रम के लिए सभी सामग्री प्रदान करेगा। मूलतः यही है। तो यह क्या करता है? ईमानदारी से कहें तो यह इस वर्ग में हर किसी को कम से कम 50 रुपए बचाता है और वास्तव में 75 रुपए से भी अधिक बचाता है। आप कहते हैं, लेकिन हिल्डेब्रांड, आप प्रति पीस 10 रुपए कमा रहे हैं। आप यह सारा पैसा कमा रहे हैं। कई वर्षों तक ऐसा करने के बाद मैं आपको यह बता दूं कि मैं कितना कमाता हूं? उत्तर वही है, 0, क्योंकि इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। सच कहूं तो मुझे इनमें से कुछ लोगों को कुछ सामग्री के लिए भुगतान करना होगा। हम वीडियो वगैरह देखने जा रहे हैं। मुझे उन लोगों को भुगतान करना पड़ा है। मेरा लक्ष्य और मैं अब तक काफी हद तक सफल रहा हूं, कुछ भी नहीं कमाना है और अंत में मैं उसी के साथ बाहर आता हूं। जब तक मेरा काम पूरा हो जाता है, मुझे कैसे कहना चाहिए, मैं इस सामग्री को और अधिक विकसित करने के लिए उस सामग्री का उपयोग करता हूं जो आप लोग मुझे देते हैं। तो वहां कुछ इस तरह से चल रहा है। मेज पर इतने सारे कार्ड हैं। यह ऐसा ही है, लेकिन यह 10 रुपए का है। तो आप कहते हैं कि वह सारी सामग्री ऑनलाइन कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? इसे ही वे इंटरनेट कहते हैं। इसे कहा जाता है, मुझे बताएं, मेरा नाम अल गोर है, मैंने इसका आविष्कार किया है। क्षमा करें, मुझे अब इस बारे में सावधान रहना होगा। यह वीडियो टेप पर है। इसे ही राष्ट्रपति बुश ने गूगल कहा था। मैं अपना URL नहीं जानता, यह ईमानदार सच्चाई है। तो यहाँ बताया गया है कि आप मेरी साइट तक कैसे पहुँचते हैं। वैसे यह ब्लैकबोर्ड के बाहर है, यह सार्वजनिक स्थान पर है, इसलिए जब आप घर जाएं तो आप यह सामग्री कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह वेब पर है। मैं गूगल पर जा रहा हूँ। इस तरह मैं अपनी साइट पर पहुँचता हूँ। मैं टेड हिल्डेब्रांड टाइप करता हूँ। यह यहाँ खोज बॉक्स में सबसे ऊपर है। मैं टेड हिल्डेब्रांड टाइप करता हूँ। मैं खोज दबाता हूँ और फिर वह वहाँ पहुँच जाता है। क्या आप उसे देखते हैं? थियोडोर टेड के लिए थियोडोर का दूसरा नाम हिल्डेब्रांड और यह गॉर्डन कॉलेज कहता है। इसलिए मैं अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। इसे हिट करने के बाद मैं इसे बुकमार्क कर सकता हूँ, क्योंकि क्या मैं बार बार वहाँ वापस जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे बुकमार्क करता हूँ। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रम संसाधन 34, 20, 37, 28 यहाँ साइट है। वैसे जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप DSV डिजिटल अमेरिकी मानक देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि यह कहता है ओल्ड टेस्टामेंट BCM 101, यही हम हैं। तो आप ओल्ड टेस्टामेंट BCM 101 इंच पर जाएं और आप वहां क्लिक करें और यहां क्या है? पाठ्यक्रम। क्या आपको इस मुद्रित की आवश्यकता है? हाँ, आप ऐसा करते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग अपना पाठ्यक्रम खोने जा रहे हैं। क्या यह हमेशा वहां है? यह हमेशा वहां है। तो यहाँ आपके पाठ्यक्रम के लिए HTML doc PDF है। अब आपको अपने पाठ्यक्रम की प्रतियां मिल गई हैं, इसलिए आपको उस इलेक्ट्रॉनिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पुरानी परीक्षाओं से कुछ पुरानी अध्ययन मार्गदर्शिकाएं दी गई हैं। यहाँ आपके पहले सप्ताह का कार्य है। आपको अगले गुरुवार को क्या करने की आवश्यकता है? आप उत्पत्ति 1 से 25 पढ़ने जा रहे हैं। आप इसे DSV में कर सकते हैं। यहाँ दासव है। आप इसे दासव जिप फाइल से कर सकते हैं। अब कुछ लेख हैं जिन्हें आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और इसलिए लेख कहाँ हैं? आप बस यहाँ नीचे जाएं और आप इसे यहाँ देखें। इस पर लिखा है डॉक्टर इलेन फिलिप्स थियोलॉजी प्राइमर। तो आपके पास HTML डॉक है और फिर आपके पास एक MP3 है। MP3 का मतलब क्या है? आप MP3 लिंक पर राइट क्लिक करें और इस रूप में सहेजें पर क्लिक करें और फिर आप इसे अपने कंप्यूटर या जंप ड्राइव पर सहेजें और आपको इसके लिए ऑडियो तैयार मिल जाएगा। अब यहाँ डॉक्टर पेरी फिलिप्स हैं। डॉक्टर पेरी फिलिप्स ने खगोल भौतिकी में PhD की है और वह उत्पत्ति के दिनों, सृष्टि के 7 दिनों पर लिख रहे हैं। वह एक वैज्ञानिक हैं, कॉर्नेल विश्वविद्यालय से PhD हैं और वह उत्पत्ति के दिनों पर लिखते हैं HTML, doc, PDF और MP3 ताकि आप इसे सुन सकें। यहाँ डॉन कार्सन है। अब कार्सन एक सुपर विद्वान है और मुझे उनकी बहुलवाद की चुनौती 3 प्रिंट प्रारूपों और MP3 ऑडियो में फिर से मिल गई है ताकि आप उसे सुन सकें। अब इस कक्षा के लिए मैं आपको अगले गुरुवार के लिए प्रश्नोत्तरी के पहले कुछ प्रश्न देता हूँ। यह आपका पहला प्रश्नोत्तरी प्रश्न है। क्या आपने इसे लिखे नहीं? यह मूर्खतापूर्ण है। पहला प्रश्न यह है, क्या आपने उत्पत्ति 1 से 25 पढ़ी है? आपने कितना पढ़ा? क्या आपने 100%, 90% या 80% पढ़ा? पिछले 3 सप्ताहों में आपने उत्पत्ति 1 से 25 में से कितना पढ़ा? मतलब मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो? उत्पत्ति 1 से 25 पढ़े। क्या आपने इलेन फिलिप्स का प्राइमर, थियोलॉजी प्राइमर पढ़ा? हाँ या नहीं? क्या आपने पेरी फिलिप्स की डेज ऑफ जेनेसिस पढ़ी? हाँ या नहीं? और यदि आपने पूरी चीज नहीं पढ़ी तो कितनी? अब दिए कार्सन लेख पर मैं आपसे विशिष्ट प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, इसलिए कार्सन को आपको अधिक विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपसे कार्सन के लेख की सामग्री पर 1 या 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। यहाँ स्मृति श्लोक हैं, 2 स्मृति छंद, उत्पत्ति 1:27 और 2:24। वैसे यहाँ सभी पावर पॉइंट हैं। मैं कक्षा में पावर पॉइंट का उपयोग करता हूँ। यहाँ वे सभी PowerPoint हैं जो मेरी स्क्रीन पर होंगे। प्रश्न, क्या इसका मतलब यह है कि आपको सभी PowerPoint को कॉपी करने की आवश्यकता होगी? नहीं, बस उन्हें डाउनलोड करें और अपनी मशीन पर रखें। आप PowerPoint में जा सकते हैं, सभी टेक्स्ट को बाहर निकाल सकते हैं और वर्ड में डाल सकते हैं, या यहाँ तक कि PowerPoint स्लाइड्स पर नोट्स भी ले सकते हैं। PowerPoint वहाँ है, इसलिए आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यह वहाँ है, इसलिए आप पाठ्यक्रम सामग्री के हिस्से के रूप में उनका उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको इसका फायदा नजर आता है? तो PowerPoint यहाँ सूचीबद्ध हैं। वो ऑनलाइन बाइबल प्रश्नोत्तरी 37, 29, 41, 50। बाइबल रोबिक्स, हम कुछ बाइबल रोबिक्स करेंगे और हम इसे कुछ मिनटों में करेंगे। यहाँ एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी है। जब आप उत्पत्ति 1 से 25 पढ़ते हैं तो यहाँ वे कहानियाँ हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप जानें। आप बाइबल का बड़ा हिस्सा पढ़ रहे होंगे, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, है ना? इसलिए मैं उन कहानियों की सूची बनाऊंगा जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप जानें और उनके विवरण में महारत हासिल करें। मैं आपसे उन विशिष्ट कहानियों पर विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा। अब पीटर स्टोरी ने जेनेसिस की किताब पर एक HTML5 जावास्क्रिप्ट क्विजर बाइबल क्विजर बनाया है, इसलिए मैं आपको यह दिखाने के लिए जेनेसिस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करने जा रहा हूं कि यह क्या है। यह एक तरह का मजा है। यहां एक बाइबल प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन बनाई गई है। यह सब ऑनलाइन है, वहां है, आप इसे कहीं से भी किसी भी समय कर सकते हैं। यहां उत्पत्ति की पुस्तक है, अध्याय 1 से 50। फिर यह पूछता है कि क्या आप कठिनाई के आरंभिक, मध्यवर्ती या उन्नत स्तर चाहते हैं। आप लोग क्या प्रयास करना चाहते हैं? उन्नत ठीक है, ये लोग अच्छे हैं। ठीक है, आइए उन्नत प्रश्नों का प्रयास करें और मैं शुरुआत पर क्लिक करने जा रहा हूं और हम अगला पर क्लिक करने जा रहे हैं। फिर लगभग 10 मिनट बाद यह ऊपर आ जाएगा, यह तेजी से ऊपर आ गया। तो हमारा पहला प्रश्न, याकूब ने राहेल की कब्र पर क्या रखा? फूल, आप आमतौर पर कब्र पर फूल चढ़ाते हैं न? उसके प्रत्येक बच्चे की ओर से एक खंभा, एक पत्थर। क्या किसी ने शिंडलर्स लिस्ट देखी? उन्होंने एक पत्थर रख दिया। वैसे भी भगवान की वेदी, किसी ने कहा वेदी, इसलिए हम एक वेदी चुनने जा रहे हैं। अब कौन सा रंग आया? यह लाल रंग का माना जाता है, इसलिए जब आप गलत हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया आपके सामने होती है। सही उत्तर हरे रंग में आता है, बढ़ता हुआ रंग। तो यह वास्तव में एक स्तंभ था, उन्होंने एक स्मारक के रूप में एक स्तंभ बनवाया। यह कोई बुरा अनुमान नहीं है, प्रभु की वेदी है। उन्होंने बहुत सारी वेदियां बनाई। तो फिर मैं अगला दबाता हूं और हम इस पर जा सकते हैं, जिस समय शेम के वंशज पृथ्वी पर थे, पृथ्वी किसके समय विभाजित हुई थी, और फिर यह आपको ये नाम देता है। वैसे क्या ये उन्नत प्रश्न है? हाँ, निमरोद, यह एक उत्कृष्ट अनुमान था, क्योंकि प्रभु के समक्ष निमरोद एक शक्तिशाली शिकारी था, लेकिन उसने अनुमान लगाया और मैं निमरोद पर दबाव नहीं डालना चाहता क्योंकि मुझे फिर से बुरा लगेगा। मैं पेलेग को धक्का देने जा रहा हूं। हिब्रू में पेलेग शब्द का अर्थ है विभाजन करना, आप भाषाओं को विभाजित करना जानते हैं। शायद क्या मुझे सही चुनना चाहिए? मैं लुडाइट्स के सम्मान में लुडाइट को क्यों नहीं चुनता? क्या आप जानते हैं कि लुडाइट क्या होता है? मैं लुडाइट को चुनने जा रहा हूं और आप देखेंगे कि उत्तर वास्तव में पेलेग था। पेलेग सही उत्तर के रूप में सामने आता है और कहता है, नहीं, लुडाइट गलत है। छात्र का प्रश्न, हमें उन्नत प्रश्न नहीं चुनना चाहिए था, ये बहुत उन्नत हैं। यदि आप आरंभिक प्रश्न चुनते हैं तो उसमें लिखा होगा आदम की पत्नी कौन थी या कुछ इस तरह का। देखो वह क्या कर रहा है। मुझे यहां से शुरू करने दीजिए, वास्तव में मुझे प्रश्नोत्तरी चयनकर्ता पर वापस जाने दीजिए ताकि आप प्रश्नोत्तरी चयनकर्ता पर वापस जा सकें। वह पागल है, इसलिए मुझे बस यहां जाकर अगला मारने दीजिए। यहां एक आरंभिक प्रश्न है। उत्पत्ति 5 में सबसे लंबे समय तक कौन जीवित रहा? किसी में भी सबसे अधिक समय तक जीवित कौन रहा? मैथ्यूला। तो यह प्रश्नोत्तरी है। अब आप कहते हैं, मैं अभी भी मैथ्यू लाह को नहीं जानता था, इसलिए बाइबल प्रश्नोत्तरी यहां ऑनलाइन है। क्विज के सभी प्रश्न आसान खंड शुरुआती स्तर से लिए जाएंगे। तो आप शुरुआती स्तर पर जा सकते हैं और आपके सामने 193 प्रश्न आएंगे। इनके माध्यम से चर्चा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शुरुआती सवाल सामने आएंगे, हालांकि मैथ्यू लाह आपकी प्रश्नोत्तरी में नहीं होगा। तो क्या हर कोई देखता है कि यह कैसे काम करता है? तो चलिए मैं इस पुराने नियम प्रश्नोत्तरी पर वापस आता हूँ और मैंने व्यवस्था विवरण के माध्यम से उत्पत्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तब स्पष्ट रूप से मैं जोशुआ की पुस्तक के लिए 700 प्रश्न लिख रहा था और मुझे आपके साथ ईमानदार होना है, मेरे पास समय ही समाप्त हो गया था। मैंने अब और कुछ नहीं किया है और मैं फ्लैश को पुनः प्रोग्राम करने में सक्षम नहीं हूं और बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाया हूं। मेरे पास इसे करने का समय ही नहीं है। लेकिन मैंने जेनेसिस टू ड्यूटेरोनॉमी पूरा कर लिया है। वैसे ड्यूटेरोनॉमी के माध्यम से ऐसा करना एक बहुत बड़ा काम है, तो हमारे पास उसके लिए प्रश्नोत्तरी होगी। तो फिर यहां वे कहानियां हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक होगा। पी असाइनमेंट का प्रतिलेखन 41, 51, 46, 59। चलिए आपके पाठ्यक्रम पर वापस चलते हैं। एक चीज जो हम कक्षा में करेंगे वह यह है कि यहां उपस्थिति नीति और अतिरिक्त क्रेडिट है। लेकिन इससे पहले कि मैं अतिरिक्त श्रेय दूं, मैं एक असाइनमेंट का वर्णन करता हूं और आप इसके बारे में सोच रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आज आप समूहों में बंट जाएं। तो आप 6 या 7 के समूहों में बंट जाएंगे। इसलिए चारों ओर देखें और 6 या 7 के समूहों में विभाजित होने के बारे में सोचें। अब आप अगले गुरुवार तक क्या करने जा रहे हैं? मुझे यह समझाने का प्रयास करें कि क्या होने वाला है। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको ऑडियो का 10 मिनट का अनुभाग देने जा रहा हूं और आप उस व्यक्ति ने जो कहा है उसे टाइप करेंगे। मैं इसे प्रतिलेखन कहता हूं। क्या आप जानते हैं प्रतिलेखन क्या है? आप सुने और 10 मिनट तक लिपिबद्ध करें और आपको यह मिल गया। अब आपके समूह में 6 लोग होंगे, यानी 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। आप 6 लोगों को लें और उन्हें एक साथ रखें और आपको क्या मिला? आपके पास 1 घंटे का व्याख्यान है। इसलिए मुझे डॉक्टर डेव मैथ्यूसन और डॉक्टर रॉबर्ट वेनॉय के व्याख्यान मिले हैं। ये लोग वास्तव में सुपर विद्वान हैं और हम उनके व्याख्यानों को किस रूप में लिखने जा रहे हैं? HTML, DOC और PDF। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे यहां फिर से चलने दो। मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह छात्रों के बीच कभी भी बहुत अच्छी तरह से नहीं बिकता है, लेकिन अगर मैं यह कहता रहता हूं तो मुझे उम्मीद है कि यह लोकप्रिय हो जाएगा। जब मैं कॉलेज गया तो ऐसा लगा जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ, मुझे पढ़ाओ, ये सब चीजें, मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ, और यह सब आत्मनिर्देशन था। मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप इस तथ्य के बारे में सोचें कि आप गॉर्डन कॉलेज में हैं। क्या गॉर्डन कॉलेज सचमुच एक अविश्वसनीय जगह है? आप यहाँ आकर भाग्यशाली हैं। मैं जानता हूं कि अब हम भाग्य शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यह विशेष है कि आप यहां हैं। मेरी बात यह है कि क्या हमें गॉर्डन कॉलेज में अन्य स्थानों पर ईसाई लोगों की मदद करने के लिए चीजें विकसित करने की जरूरत है जिनके पास यह उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे पास है? तो हम जो करना चाहते हैं वह ये व्याख्यान तैयार करना है जो सैमुअल के विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबर्ट वेनॉय से लिए गए हैं। हम उनके व्याख्यान लेंगे और इन व्याख्यानों को प्रतिलेखित करेंगे और उन्हें दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। वैसे क्या दुनिया भर से लोग ईसाई चर्च में अपनी मदद के लिए इन व्याख्यानों का उपयोग करने के लिए गॉर्डन कॉलेज आएंगे? उत्तर है हाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन चीजों का उत्पादन करने के संदर्भ में सीखने के बारे में सोचें जो अन्य लोगों की मदद करती हैं, जो हमारे जैसे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। अब आप कहते हैं ओह हाँ, हिल्डेब्रांट, इसका मतलब सिर्फ काम है। हाँ, इसका अर्थ है आपके समय का 1 घंटा मूल्य, 1 घंटे का काम, और हमने सब कुछ एक साथ कर दिया। तो आपके 6 या 7 के प्रत्येक समूह में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो संपादक होगा, और बेहतर होगा कि वह अंग्रेजी का प्रमुख या उसके जैसा कोई व्यक्ति हो। आपके पास एक व्यक्ति है जो संपादक है, और आपके पास वह है जिसे हम मुंशी कहते हैं, और आपके पास 5 या 6 मुंशी हैं। 5 या 6 पत्रकारों को एक MP3 ऑडियो मिलेगा। वे इसे टाइप करेंगे। यह लगभग 10 मिनट का होगा, और आप कितनी तेजी से टाइप करते हैं इसके आधार पर इसमें आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताता हूँ, और आप कहते हैं, हिल्डेब्रांट, आप यह सब कैसे जानते हैं? मैंने खुद ही घंटों घंटों तक प्रतिलेखन किया है, इसलिए मुझे पता है कि इस काम में कितना समय लगता है और इसमें क्या समस्याएं हैं। जब आपको अपना ऑडियो मिलता है, यदि आप उसे आगे फुलस्टीन पर रखते हैं, तो क्या वह व्यक्ति आपके टाइप करने की तुलना में बहुत तेजी से बात करता है? हाँ, वह 1 मिनट में 1 मील बात कर रहा है, और आप नहीं रह सकते। यदि आप विंडोज में हैं और आप विंडोज मीडिया प्लेयर में हैं, तो एक प्ले बटन है। इसमें प्ले बटन पर एक त्रिकोण है। यदि आप उस प्ले बटन पर राइट क्लिक करते हैं, तो आप इसे धीमा पर सेट कर सकते हैं, और यह इसे धीमा कर देता है। अब प्रश्न, क्या फायदा है? यदि वननॉय धीमी गति से चलता है, तो क्या मैं उसके बराबर टाइपिंग कर सकता हूँ? मैं अभी भी उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन अब मैं एक बार में 1 मिनट टाइप करता हूँ, मैं 1 मिनट टाइपिंग करता हूँ। मैं क्या करूँ? आप नीचे वाली छोटी स्क्रबर चीज को पकड़ लेते हैं और उसे वापस ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह काम कैसे करना है? स्क्रबर को वापस लाए और फिर आप इसे 1 मिनट के लिए फिर से चलाएं। फिर आप इसे दोबारा करें, टाइप करें, फिर दोबारा करें। तो फिर 1 मिनट से ऊपर जाने के लिए लगभग 2 या 3 बार इसे वापस खींचने के बाद क्या मुझे 1 मिनट टाइप हो गया है? फिर मैं दूसरे मिनट पर जाऊंगा और यह 1 मिनट से 2 मिनट का होगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और पहली बार जितनी तेजी से टाइप कर सकता हूँ टाइप करूंगा, और मुझे इसका लगभग 80 या 70% मिलेगा। फिर मैं 1 मिनट के निशान पर वापस आऊंगा और इसे फिर से सुनूंगा। लेकिन मीडिया प्लेयर का धीमी गति से चलना वास्तव में महत्वपूर्ण और मददगार है। अब मैक लोग, मैं मैक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक ईसाई हूँ। क्षमा करें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, खासकर उस दिन जब स्टीव जॉब्स ने आज पद छोड़ा। स्टीव जॉब्स ने आज पद छोड़ दिया, यह आप मैक लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मैक पर आप मैक को धीमी गति से चला सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, लेकिन मुझे बताया गया है कि यदि आप मैक प्लेयर में प्रॉपर्टी या कुछ और में जाते हैं, तो आप मैक को धीमी गति से चलाने के लिए पा सकते हैं, और आप इसे धीमी गति से चलने के लिए सेट कर सकते हैं। तो मैक भी यह कर सकता है। यह देखने के लिए CET से जांच करें कि क्या वे जानते हैं कि यह कैसे करना है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, क्योंकि यह मैक है और मैं सिर्फ एक PC व्यक्ति हूँ। मैक लोग मुफ्त VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर सकते हैं और निचले दाएं कोने में संख्या को समायोजित करके उस प्लेयर की गति को धीमा कर सकते हैं। तो वह सामने आ रहा है, इसलिए उन समूहों के बारे में सोचें जिनमें आप शामिल होने जा रहे हैं। प्रपरीक्षण और प्रश्नोत्तरी 46 50 48 04। इस पाठ्यक्रम में यदि आप अच्छा ग्रेड चाहते हैं, तो आपको परीक्षा देनी होगी। मूलतः कक्षा इसी प्रकार काम करेगी, हर गुरुवार क्विज 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 क्विज, हर 5वें सप्ताह में एक परीक्षा होगी। प्रश्नोत्तरी 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 परीक्षण, यह ऐसे चलता है। ठीक है, इसलिए हर गुरुवार को या तो एक प्रश्नोत्तरी होती है या उस तरह की लय की परीक्षा होती है। अब यदि आप कहते हैं, मैंने हिलेब्रांट की प्रश्नोत्तरी में असफल रहा है, मुझे नहीं पता कि मेथुसेलह की माँ कौन थी। हिलेब्रांट ने मेथुसेलह की माँ के बारे में यह प्रश्न पूछा था और मुझे यह नहीं पता था, इसलिए मैं चूक गया और मैं अपना ग्रेड बेहतर करना चाहता हूँ। आप यहाँ एक्स्ट्रा क्रेडिट कर सकते हैं, आप अतिरिक्त प्रतिलेखन कर सकते हैं, और वैसे हम इस पूरी चीज को टेप कर रहे हैं ताकि आप वास्तव में इस वर्ग का प्रतिलेखन कर सकें। जैसे ही हमें ट्रांसक्रिप्शन मिलेंगे, हम उन्हें पूरी कक्षा के लिए भी डाल देंगे ताकि अन्य लोगों की मदद की जा सके। आप अन्य प्रतिलेखन भी कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर आर लेयर्ड हैरिस के व्याख्यान मिले हैं जिन्होंने लेविटस के बारे में बात की थी और लेविटस के विशेषज्ञ थे। तो आप अतिरिक्त क्रेडिट के लिए ऐसा कर सकते हैं, आपको संपूर्ण प्रतिलेखन करना होगा। आपको पूरा एक घंटा करना होगा जिसमें आपको लगभग 6 से 10 घंटे लगेंगे। फिर आपके अंतिम औसत में अतिरिक्त क्रेडिट के 5 अंक जोड़ दिए जाते हैं। तो यह ऐसा करने का एक तरीका है। आप स्मृति छंद भी कर सकते हैं। आर ऑनर्स विकल्प 48-05-49-48। मैं सम्मान के विकल्प के लिए भी थोड़ा विज्ञापन करना चाहता हूँ। सम्मान विकल्प क्या है? पेज 5 पर ऑनर का विकल्प है और यह इस तरह काम करता है, यदि आपने पहली परीक्षा में 92 से बेहतर स्कोर किया है और क्विज में आपको 90 से बेहतर अंक मिले हैं, तो आप ऑनर्स विकल्प के लिए पूछ सकते हैं। वह क्या है? आप स्वयं 2 प्रतिलेखन करके अंतिम परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 प्रतिलेखन में आपको लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे। तो आप कहते हैं, ठीक है, मुझे 10 से 12 घंटे मिल सकते हैं। फाइनल न लेने का क्या फायदा है? फाइनल के सप्ताह में सभी कक्षाओं का फाइनल होता है। इन सभी परीक्षाओं के साथ अंतिम सप्ताह वास्तव में कठिन है। यदि आप उन फाइनल में से एक को हटा सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे ओल्ड टेस्टामेंट कक्षा में फाइनल नहीं लेना है, तो क्या यह आपको अपनी अन्य परीक्षाओं के लिए बेहतर अध्ययन करने के लिए मुक्त कर देता है? अपने दिमाग का प्रयोग करें। तो इस तरह से आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। आपको ऐसा कब करना है? आप इसे अपने समय पर जब चाहें तब कर सकते हैं और फिर आप फाइनल से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा करने का एक फायदा है, इसलिए इसे सम्मान विकल्प कहा जाता है। यहां मूल्यांकन मेरे लाभ के लिए दिए गए हैं, मैं एक वक्र पर ग्रेड देता हूं, लेकिन यहीं से मैं अपनी शुरुआत करता हूं। इसलिए यदि आप ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस अतिरिक्त क्रेडिट कार्य करें और यह आपको अपना ग्रेड समायोजित करने देता है। मैं वक्रों में विश्वास करता हूं। मैं एक बूढ़े आदमी के पास पढ़ाता था, वह 75 साल का था। उन्होंने कहा कि वह कर्विंग में विश्वास नहीं रखते। उनके लिए मोड़ सड़कों पर, बेसबॉल में और महिलाओं पर थे, परीक्षा और ग्रेड पर नहीं। अब मैं कहता हूं, वह आदमी 75 साल का था, उसे छुट्टी दे दो। आप कहते हैं, यह बहुत ही कामुकतापूर्ण बयान है, वह आदमी 75 का है, ठीक है, उसे जीवित रहने दो। मैं कहता हूं, वक्र मेरे परीक्षण अंकों पर भी निर्भर करते हैं, तो हम उस पर काम करेंगे। इस आने वाले सप्ताह के लिए असाइनमेंट 49-49-51-33। इसके बाद यदि आप ऑडियो प्रोजेक्ट को पलटते हैं, जिसका वर्णन पेज 6 पर ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन के साथ किया गया है, फिर यदि आप पृष्ठ 8 पर जाएं, यही वह चीज है जिसे आपको खुला रखना है। यहीं पर कार्रवाई होती है और यह मूल रूप से 1 सितंबर है। क्या आप 1 सितंबर देखते हैं? अगले गुरुवार को क्या देय है? आपको धर्मशास्त्र प्राइमर पढ़ना होगा, आपको उत्पत्ति के दिन पढ़ना होगा, आपको बहुलवाद की चुनौतियां पढ़ना होगा। वैसे धर्मशास्त्र प्राइमर और उत्पत्ति के दिन क्या आपको उन पर सभी विवरण जानना है या क्या आपको बस इसे पढ़ना है? बस इसे पढ़े। आपको विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुलवाद की चुनौतियों पर विवरण अवश्य जानना होगा। बाइबल उत्पत्ति 1 से 25 तक पढ़े। मूलतः आपको अपना प्रतिलेखन करना है। आपके प्रतिलेखन अगले गुरुवार को भी होने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन वे अगले सप्ताह होने वाले हैं और आप इसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ 1 मिनट में समूह बनाएं। आपको समूहों में विभाजित होना है, लेकिन समूहों में विभाजित होने से पहले आप लोगों को उत्पत्ति 1 से 25 जानना होगा। मैं आपको बाइबल क्रॉबिक्स में उत्पत्ति 1 से 25 पढ़ाना चाहता हूँ। इसका मतलब है हर कोई तैयार है। हम उत्पत्ति 1 से 25 तक करने जा रहे हैं। यह इस प्रकार है। हर कोई खड़ा हो जाए और अपने समूहों में सेंध लगाने के बारे में सोच रहा हो, लेकिन यहाँ उत्पत्ति 1 से 25 है। बाइबल रोबिक्स करो। इसलिए हर बुधवार रात 7 से 8 बजे इस कमरे में काइल परीक्षाओं के लिए समीक्षाएं चलाएगा। प्रश्नोत्तरी हमेशा गुरुवार को होती है, इसलिए वह इसे हर बुधवार रात 7 से 8 बजे तक यहीं करेगा। यह जानना अच्छा है, वह आपको इसके लिए तैयार कर देगा। चलिए वापस आते हैं, हमें 2 और काम करने हैं। हमें 1 बाइबल मूल्यांकन परीक्षा मिली है, इसलिए हम आपके पास बाइबल साक्षरता ज्ञान के स्तर का आकलन करने का प्रयास करने जा रहे हैं। यह हमारी पहली प्रश्नोत्तरी होगी। इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन यह एक तरह का मूल्यांकन है जो हम करते हैं। टी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रमाण 51, 34, 52, 16। इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं कुछ अंतर्निहित पूर्वधारणाओं पर शुरुआत करना चाहता था। गॉर्डन कॉलेज में हमारा मानना है कि यह पुस्तक बाइबल ईश्वर का वचन है। अब इससे कुछ धारणाएं बनती हैं। यदि यह परमेश्वर का वचन है, तो हमारी पहली धारणा यह है कि इसमें क्या है? एक ईश्वर है। क्या हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां नास्तिकता बड़ी वापसी करने की कोशिश कर रही है? लगभग 4% अमेरिकी नास्तिक हैं और वे बड़ी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सब है डॉकिंस और यह सब आदि आदि। तो हम क्यों मानते हैं कि ईश्वर है? वैसे क्या हम ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं? जवाब न है। क्या यह विश्वास करना उचित है कि ईश्वर है? हाँ, हालांकि हम इसे साबित नहीं कर सकते। तो मैं जो करना चाहता हूँ वह ईश्वर के अस्तित्व के कुछ प्रमाणों पर गौर करना है। यो ब्रह्मांड संबंधी तर्क 52, 17, 54, 34। जिन प्रमाणों का हम उपयोग करने जा रहे हैं उनमें से एक ब्रह्मांड संबंधी तर्क है। वैसे ये सभी तर्क वास्तव में वेब पर हैं। वहां एक पूरी शीट है और अगली बार मैं आपको ये सब मुद्रित करके शीट दूंगा। लेकिन ब्रह्मांड संबंधी तर्क मूलतः इस तरह काम करता है, कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, कारण प्रभाव। अगर मैं तुम्हें देखूं तो क्या मैं मान सकता हूं कि तुम्हारे कोई माता पिता थे? वैसे क्या आपके लिए यह संभव है कि आप अपने माता पिता को न जानते हों, लेकिन क्या कभी आपके माता पिता थे? अब आप कहते हैं, लेकिन हिल्डेब्रांट, अब वे इसे टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अगर मैं तुम्हें देखूं तो मैं मान सकता हूं कि तुम्हारे माता पिता थे। तो आप प्रभावों को देखें और कारणों के बारे में सोचें। आप एक रेलगाड़ी का मलबा देखते हैं, क्या आप यह मान सकते हैं कि जब आप एक रेलगाड़ी का मलबा देखते हैं तो कुछ गलत हो गया है? जब आप चीजों का प्रभाव देखते हैं तो क्या आप कारण मान सकते हैं? कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, कारण प्रभाव। क्या कारण प्रभाव? कारण प्रभाव हजारों वर्षों के कारण प्रभावों पर पूरी तरह से काम कर सकता है। अब जब आप पहले कारण पर वापस आते हैं तो क्या होता है? वह पहला कारण क्या है जिसके कारण सब कुछ हुआ? कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, कारण प्रभाव सभी तरह से काम करते हैं। पहला कारण क्या है? आप कहते हैं, ठीक है, पहला कारण यह था कि पूरा ब्रह्मांड एक साथ आ गया, एक बड़े में। वास्तव में यह छोटा था, यह एक अंगूर के आकार के बारे में था, है ना? इसका आकार अंगूर या तरबूज के बराबर माना जाता है। एक बार तो सब एक साथ थे, फिर क्या हुआ? बूम, विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वह आरंभिक विस्फोट किस कारण से हुआ? वैसे यहां तक कि जो वैज्ञानिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उन्हें भी इस चीज को आगे बढ़ाने के पहले कारण के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। हम ईसाई होने के नाते कहेंगे कि पहला कारण क्या है? ईश्वर। और इसलिए दूसरे शब्दों में कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, कारण प्रभाव, हम मूल कारण पर वापस जाते हैं और पहला कारण ईश्वर है। क्या अन्य लोगों को पहले कारण के रूप में कुछ और प्रस्तावित करना होगा? वैसे जब आपने पूरे ब्रह्मांड को एक तरबूज में इकट्ठा कर लिया है और आपको उस पूरी चीज को उड़ा देना है, तो क्या आपके पास इतना शक्तिशाली कुछ होना चाहिए जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सके और पूरी चीज को ऐसे ही उड़ा सके? ब्रह्मांड के लिए किस प्रकार का बल लगता है? तो पहला कारण है और हम सुझाव देंगे कि ईश्वर हमारा पहला कारण है। अन्य लोग अन्य कारण प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस कारण और प्रभाव वाली चीज का उपयोग करते हैं तो यह वैसा ही होता है। वी टेलीलॉजिकल जॉली ग्रीन जाइंट तर्क डिजाइन से तर्क 54, 35, 60, 49। ये मुझे बहुत पसंद है। इस तर्क को टेलियोलॉजिकल तर्क कहा जाता है। यह डिजाइन का तर्क है। इसका मतलब यह है कि मैं इसे अपना जॉली ग्रीन जाइंट तर्क कहता हूं। आप लोग सभी कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या आप देखते हैं कि कुर्सियां कैसे व्यवस्थित हैं? पंक्तियां, गलियारा वहां, गलियारा वहां, गलियारा वहां, गलियारा वहां, गलियारा वहां, और लगभग 10 पंक्तियां पीछे जा रही हैं। अब क्या होने वाला है? वहां एक हंसमुख हरे रंग का विशाल प्राणी है और हम सभी कुर्सियों के हुक खोलने जा रहे हैं। ऐसा न करें, लेकिन हम सभी कुर्सियों के हुक खोलने जा रहे हैं। फिर हंसमुख हरा विशालकाय जेनक्स की इमारत को उठाने जा रहा है और वह इसे हिलाने जा रहा है और वह इसे नीचे गिराने जा रहा है। जब वह इसे नीचे रखता है तो मैं चाहता हूं कि कुर्सियां बिल्कुल इसी क्रम में हों। वैसे 110 कुर्सियां क्या हैं? कोई बड़ी बात नहीं। 110 कुर्सियां, मैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही चाहता हूं जैसे वे अभी हैं। गलियारा वहां, गलियारा वहां, गलियारा वहां, गलियारा वहां, ये पंक्तियां, 3 वहां, 4 वहां, ठीक है, बिल्कुल इस व्यवस्था की तरह। अब मैं उसे ऐसा 1,000,000,000 बार करने दूंगा। वह जेनक्स को अरबों बार हिलाएगा और नीचे रख देगा। प्रश्न, क्या आपको लगता है कि 1,000,000,000 बार के बाद यह सिर्फ एक बार बिल्कुल इसी तरह सामने आएगा? आप कहते हैं, हम अमेरिकी हैं और हम अब अरबों नहीं खरबों का काम करते हैं। अब अगर मैं आप होते तो मैं इतना जोर से नहीं हंसता, क्योंकि आप लोग ही हैं जो भुगतान अटका रहे हैं। तो मैं तुम्हें 1,000,000,000,000 दूंगा। विशाल इसे 1,000,000,000,000 वर्षों तक हिलाएगा और वह ऐसा करता रहेगा। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि 1,000,000,000,000 वर्षों में कुर्सियां इसी तरह पंक्तिबद्ध होंगी? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि उसके पहली बार ऐसा करने के बाद ये कुर्सियां इतनी उलझ जाएंगी कि हमेशा के लिए अस्तव्यस्त हो जाएंगी? जब आप क्रम देखते हैं, यदि आप इस कमरे में आए थे और आप अभी अभी ब्रह्मांडीय आकाश से पैदा हुए थे और आप इस कमरे में आए थे और आप एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पहले अनुभव के रूप में इस कमरे में आए थे और आपने चारों ओर देखा और देखा ये कुर्सियां, क्या आप मानेंगे कि ये कुर्सियां ग्लेशियर की थीं जिसने इन कुर्सियों को इस क्रम में धकेल दिया? मैं तुम्हें एक अलग रास्ते पर ले चलता हूँ, मेरे साथ सिनाई के चारों ओर चलो। मेरे साथ सिनाई के रेगिस्तान में चलो, जो मैंने कई हफ्तों तक किया क्योंकि मेरे गाइड ने कहा था कि हमें सिनाई चलना है। खैर, सिनाई में घूमने पर हर जगह धमाल मचता है। अचानक हम इस चीज पर चलते हैं, वहाँ इस बड़े 10 फीट चारों ओर चट्टानों का एक घेरा है, और पश्चिमी तरफ इस तरह से दो चट्टानें स्थापित हैं, और वहाँ एक चट्टान है जो इस तरह से इसके ऊपर जाती है, और वहाँ एक है, वहाँ पश्चिम की ओर छेद करें और आप वहाँ रेंग कर जा सकते हैं। यह चट्टानों से बने इग्लू की तरह है। अब जब हमने पहली बार सिनाई में उन नवामियों को, उस इग्लू को देखा, और वैसे उनमें से 10 थे, और उन सभी का द्वार पश्चिम की ओर था। यह बौनों या कुछ और के लिए ऐसा था, आपको अंदर जाने के लिए वहां उतरना होगा। वैसे भी मैं क्या कह रहा हूँ, जब हमने उन सभी 10 को मारा, तो वे सभी पश्चिम की ओर थे और द्वार लगभग इतना ऊंचा था। क्या हमने मान लिया कि यह उसी तरह हुआ होगा, कि ग्लेशियर ने उन्हें उसी तरह नीचे गिरा दिया? आप में से कितने लोग हैं, जब आप ऊपर जाते हैं और उनमें से 10 को देखते हैं, सभी का मुख पश्चिम की ओर है, जिसका दरवाजा बीच में खोखला है, तो आप में से कितने लोग मान लेंगे कि यह सिर्फ प्राकृतिक कारण है, इसकी कोई योजना नहीं थी कि यह बस हो गया उस रास्ते? जब आप व्यवस्था के उस स्तर को देखते हैं, तो क्या आप यह नहीं कहते कि किसी ने ऐसा किया है? आप में से कुछ लोग न्यू हैम्पशायर से हैं। क्या आप कभी जंगल से गुजरे हैं और अचानक आप जंगल में वापस आ गए हैं और आपको चट्टानों की यह पंक्ति दिखाई देती है जो सभी सीधी रेखा में हैं और यह एक चट्टान की दीवार की तरह दिखती है? जब आप उस चट्टान की दीवार को बिल्कुल सीधी पंक्ति में देखते हैं, तो क्या आपने मान लिया कि ग्लेशियर ने ऐसा किया है या लोगों ने ऐसा किया है? जब आप आदेश के उस स्तर को देखते हैं, तो आदेश क्या मांगता है, उस व्यक्ति से जिसने इसे आदेश दिया है ना? जब आप इस कमरे में आते हैं और इन कुर्सियों को इस तरह पंक्तिबद्ध देखते हैं, तो क्या यह स्पष्ट रूप से एक इंसान का काम है? किसी ने इसे स्थापित किया है। क्या यह किस्मत है कि कुर्सियां इस तरह आ गईं, और अगर आप इसे लाख बार हिलाएंगे तो यह गड़बड़ हो जाएगी? मूलतः यह क्रम का तर्क है, क्योंकि ब्रह्मांड एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसका क्रम इस कक्ष से कई गुना अधिक है। इसलिए एक ऑर्डरर होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सामान का ऑर्डर दे। दूसरे शब्दों में, यह सौभाग्य से नहीं होता, अन्यथा आपके सामने एक अराजक गड़बड़ी होगी, लेकिन कोई अराजक गड़बड़ी नहीं है। तो यह बुद्धिमान डिजाइन नामक चीज की ओर ले जाता है। वैसे क्या अलग अलग लोग हैं जिनकी इस चीज बुद्धिमान डिजाइन पर अलग अलग राय है? फिर से मैं यहां चलना चाहता हूं, क्या इस परिसर में अलग अलग लोग हैं जिनके पास बुद्धिमान डिजाइन पर अलग अलग विचार हैं? कुछ लोग कहते हैं, नहीं, मैं बुद्धिमान डिजाइन में विश्वास नहीं करता, विकास उनकी चीज है। अन्य लोग अधिक सृजनवादी हैं, जानते हैं कि ईश्वर ने चीजें बनाई हैं। बुद्धिमान डिजाइन क्या कहता है? ब्रह्मांड को डिजाइन किया गया है, ब्रह्मांड के पास एक डिजाइनर है। अब वैसे जिन लोगों ने इसे विकसित किया है, वैज्ञानिक कहेंगे, ये लोग जो बुद्धिमान डिजाइन करते हैं, वे मूर्खों का एक समूह हैं, वे वास्तव में वैज्ञानिक नहीं हैं। मैं आपको विलियम डेम्स्की के बारे में बता दूं, वह कोई वास्तविक वैज्ञानिक नहीं है, उसने बस शिकागो विश्वविद्यालय से गणित में PhD की है। आइए देखें। अरे हाँ, और मैं यह कहना भूल गया, उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में PhD भी की है, एक डबल PhD। तो वह सचमुच एक बेवकूफ है ना? आप कहते हैं वह शिकागो विश्वविद्यालय है, हम यहाँ हार्वर्ड के लोग हैं। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि मैसाचुसेट्स के बाहर अन्य स्कूल भी अच्छे हैं। शिकागो विश्वविद्यालय एक शीर्ष स्तरीय स्कूल है। उन्हें वहां से 2 पीएचडी मिली हैं और एक गणित में। एक व्यक्ति जो गणित में पीएचडी प्राप्त करता है, क्या वह कुछ कहता है? इसके बारे में सोचो, हाँ। क्या वह विज्ञान के बारे में कुछ बातें जानता है? उत्तर है हाँ। वह उन लोगों में से एक है जो बुद्धिमान डिजाइन के पीछे हैं, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि बुद्धिमान डिजाइन रखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक हैं। इसलिए इस बारे में सावधान रहें, ठीक है, वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते, यह गलत है। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जो बुद्धिमान डिजाइन रखते हैं। तो वैसे भी मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की कुछ चीजों के बारे में सोचें। क्या हम ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, क्या ये चीजें हमें, जब हम ब्रह्मांड में उस परिमाण की व्यवस्था देखते हैं जैसी हम देखते हैं, यह सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि किसी ने यह सामान ऑर्डर किया है? मैं आपसे इस कक्षा को देखने के लिए कहता हूं, यदि आप यहां आए तो क्या आप यह नहीं मानेंगे कि किसी ने इन कुर्सियों को इस तरह रखा है? यह सिर्फ अव्यवस्था या किस्मत से नहीं हुआ। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि ब्रह्मांड इन कुर्सियों की तुलना में अधिक परिमाण का है। W. डॉक्टर पेरी फिलिप्स बिग बैंग एंड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स व्याख्यान 60-50-62-30। डॉक्टर पेरी फिलिप्स कॉर्नेल विश्वविद्यालय से खगोल भौतिकी में पीएचडी, क्या वह सभ्य है? पीएचडी खगोल भौतिकी कॉर्नेल विश्वविद्यालय। उन्होंने डॉक्टर एलेन फिलिप्स से शादी की है। डॉक्टर फिलिप्स अगले सोमवार रात 7 बजे बिग बैंग थ्योरी पर एक व्याख्यान देने जा रहे हैं, जेनक्स 237 में नीचे। मैं आप लोगों को इस पर एक ईमेल भेजूंगा। पेरी फिलिप्स बिग बैंग थ्योरी पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह कैसे सोचते हैं कि यह इस विचार की ओर ले जाता है कि ईश्वर है। एक प्रथम श्रेणी वैज्ञानिक, मैं पेरी फिलिप्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं पेरी और एलेन के साथ रहा और हम एक साल तक इसराइल में 2 जोड़ों के रूप में रहे। जब आप एक वर्ष तक एक साथ रहते हैं तो क्या आप किसी व्यक्ति को वास्तव में अच्छी तरह से जान पाते हैं? यही एक कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां हमारे बीच में डॉक्टर पेरी फिलिप्स सबसे धर्मनिष्ठ ईसाई पुरुषों में से एक हैं जिनसे मैं अपने जीवन काल में मिला हूं और मैं उन्हें लगभग 30 वर्षों से अपना प्रिय मित्र मानता हूं। लेकिन क्या वह पूर्ण गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक भी हैं? उस लड़के के पास PhD है खगोल भौतिकी में, बहुत उज्ज्वल, बहुत बहुत उज्ज्वल भी। तो वह सोमवार रात को यह कर रहा है और यह एक निःशुल्क व्याख्यान है, 7 बजे, जेनक्स 237। यदि आपने कभी बिग बैंग के बारे में सोचा है तो यह बहुत बहुत अच्छा है। उनका व्याख्यान हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन पोस्ट किया गया है। हमें यहाँ एक और काम करना है और वह है यह आकलन करना। इसलिए अगर मुझे यहाँ मदद के लिए कोई मिल जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें यह ढेर और यह ढेर दूंगा और बस उन्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। एशले होल्म द्वारा प्रतिलेखित, टेड हिल्डेब्रांट 2 द्वारा रफ संपादित, ग्रेस वुड द्वारा अंतिम संपादन।